नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा।
ओम शांति। आज हमारे बीच पिंटू भाई जी आए हैं छज्जूपुर सेंटर दिल्ली से, अथक सेवाधारी, ऑलराउंड सेवाधारी। तो आज हमारे सामने वो कुछ अपने जीवन के अनुभव और एक विषय है, बहुत कई थोड़ी रही, इस पर वो प्रकाश डालेंगे। पिंटू भाई जी।
ओम शांति। पहले थोड़ा अनुभव से शुरुआत करते हैं। बात 1995 की है। उस समय मेडिकल विंग के थ्रू एक हेल्थ मेला, जो पूरे भारत में सेवाओं के लिए हेडक्वार्टर से जाता था, तो मेला दिल्ली में आया। वहाँ दिल्ली में छज्जूपुर के नज़दीक एक जगह, वहाँ पर मेले का आयोजन हुआ। लेकिन ये जो मेला हुआ था, ये पहले से इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। दिल्ली में मेला गया और भाई साहब का फोन आया दीदी के पास कि बीच में समय है 4-5 दिन का, तो आप ये मेला अपने यहाँ पर करा लीजिए। दीदी ने यस किया और उस हेल्थ मेले में हमारा आना हुआ। उस मेले में हमारा अलौकिक जन्म हुआ। उस समय हमारी जो स्थिति थी वो ये थी कि कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। लेकिन सूक्ष्म में एक बात अंदर में रहती थी कि कुछ जीवन में ऐसा चाहिए जो हम इस देश के लिए कुछ कर सके। क्योंकि जब आज़ादी का दिन आता था तो अंदर में कुछ ऐसा होता था कि हमें कुछ करना चाहिए देश के लिए, लेकिन क्या करें क्या ना करें कुछ रास्ता नहीं था। उस समय कुछ हेल्थ की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कम लेकिन टेंशन ज़्यादा है। उस समय तो स्वीकार ही नहीं होता था कि मेरे को कोई टेंशन है। मेले में हम आए, कारण था डॉक्टर से मिलना, और किसी के कहने से हम नहीं आए। हम अपने आप ही हमने देखा कि यहाँ पर मेला है और डॉक्टर्स आए हैं, तो हमें उनसे मिलना है। बस ज्ञान का, ब्रह्म कुमारीज का, ओम शांति का कोई मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही मेले में हम आए, हमने एक भाई से पूछा कि हमें तो केवल डॉक्टर से मिलना है, हमें और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप पहले एग्जीबिशन देखिए, काफ़ी बड़ी जगह थी, उसमें बहुत सारे पंडाल बनाए गए थे हेल्थ के लिए, जो एग्जीबिशन होती हैं वो सब प्रकार की एग्जीबिशन उसमें थी। 3-4 पंडाल योग शिविर के थे, तो हमने शुरू से जो समझना शुरू किया, एक डॉक्टर भाई थे जो गाइड कर रहे थे, करीब 20-25 लोगों का ग्रुप होगा। फिर जैसे जैसे समझते गए, सुनते गए, तो ये लगता गया कि वास्तव में जिस चीज़ की आवश्यकता थी वही है, ये मिल गया मेरे को। फिर हमको डॉक्टर से मिलना है, हम तो ये भूल गए, हमको तो एक अलौकिक नशा उसी समय चढ़ने लगा। और राजयोग का शिविर का जो फॉर्म है वो भरने के बाद हम राजयोग शिविर अटेंड किए, तो उस समय बिल्कुल एक एक पॉइंट्स जो शिविर में हमें बताई गई थी एकदम स्मृति में अब नहीं है, उस समय एक एक बात जैसे कि छप गई थी। और पूरे ही दिन वही घूमती थी बुद्धि के अंदर। 3-4 दिन बाद जब लास्ट दिन था मेले का, तो बहुत सारे वाइट वस्त्रधारी फरिश्ते वहाँ आए, काफ़ी लोग आए, पूरी दिल्ली से आए। और मेला भी बहुत सक्सेस रहा दिल्ली में, उस समय 4-5 बार जगह मेला हुआ था, लेकिन उतना सक्सेस मेला कहते सबसे अच्छा वहाँ पर रहा रिजल्ट, तो उसमें हमारा आना हुआ। और फिर डॉक्टर को तो हम भूल ही गए, हमें तो जो असली डॉक्टर था वो मिल गया शिव बाबा, और एक अलौकिक नशा सेंटर का परिचय मिला, सेंटर का एड्रेस मिला, वहाँ आने लगे। लेकिन हमें तो सेंटर के लिए बहुत बड़ी एक इमेज थी कि बहुत बड़ी कोई जगह होगी, बहुत बड़ा कोई आश्रम होगा। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ का एक अलौकिक ही दृश्य था, और बाबा की ये जो अलौकिक बातें हैं। और जब कोर्स पूरा हुआ, बाकी का जो रहा था वो, तो वो जो दीदी हैं वो वहाँ से, वो कहीं और से आए हुए थे, वो चले गए, तो हमें बहुत अजीब सा लगा उस समय, क्योंकि हम वहाँ की दीदियों को तो जानते नहीं थे। तो फिर ऐसे लगने लगा कि अगर कुछ जीवन में चाहिए तो यही है, अब और कुछ नहीं करना है। तो हमने दीदी को कहा कि हमको तो आप यहीं रख लीजिए, हमको तो जाना नहीं है वो कारोबार में, कुछ में हमारा मन तो लगता नहीं है। तो दीदी ने हमें काफ़ी समझाया कि ऐसे नहीं होता है, कभी आपने अपने पिता के नाम के लिए कोई नाम पर कोई ऐसी बात आए, कभी ऐसा किया है क्या जीवन में? कि नहीं, उसका तो बहुत ध्यान रखा है, लौकिक जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जो हमारे माता पिता का नाम ऐसा हो, तो ये भी तो हमारा सुप्रीम पिता है, परम पिता है, तो उसका नाम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बात समझ में आने लगी धीरे धीरे, मुरली में बातें आने लगी। लेकिन शुरू में जो भावना होती है बहुत ऊंची भावना थी, बहुत ऊंची भावना हर एक की होती है कि बस अब जो चाहिए था वो मिल गया, और सब फरिश्ते हैं, सब देवता हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ कुछ बातें जब सेवा में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो दिखाई पड़ती हैं, तो मन में एक बहुत द्वंद्व जैसा चलता था। किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन मन में बहुत कई दिन तक चलता, लेकिन रिजल्ट यही निकलता। ऐसा 2-3 बार हुआ कि नहीं, अगर है कोई चीज़ जीवन में कुछ करने के लिए तो यही है, इसलिए मुरली को तो कभी छोड़ना नहीं है। तो उस दिन से आज तक शायद मुरली कभी नहीं मिस हुई होगी। दूसरी चीज़ जो तनाव या डिप्रेशन की बात थी, उसको तो हम जानते ही नहीं थे, वो इतना ज़्यादा घर कर गया था अंदर में कि किसी भी बात को लेके खुशी होती ही नहीं थी। और कारण था कि थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी और थोड़ी वीकनेस का था। लेकिन धीरे धीरे जब बाबा से बातें शुरू की और बाबा को कहा कि हमको तो बाबा आपकी सेवा ही करनी है, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर था, बड़ों के आगे बिल्कुल भी बोलने का नहीं था, बोलते ही नहीं थे, बड़े भाई के आगे या पिता के आगे बिल्कुल भी बोल नहीं सकते थे कुछ भी कि क्या करना है हमको। अब हमने बाबा को कहा कि बाबा हम तो उनको बोल नहीं सकते हैं, कैसे होगा हम आपका, हम तो आपकी सेवा में लगना है, हमें तो आपकी सेवा करनी है, क्योंकि अगर जीवन में कोई चीज़ है तो यही है। तो इस कारण से बाबा से ऐसे बातचीत चलती रही। बीच बीच में जब भी हम फ्री होते थे तो दीदी को फ़ोन करके बोलते थे कि हमको सेवा चाहिए, सेवा है तो बता दीजिए आप। तो सेवा हो या ना हो दीदी बुला लेते और हमें किसी न किसी सेवा में लगा करके रखते थे। तो हमारा वो समय ऐसे सफल कराया, तो दीदियों की गाइडेंस और पालना ने हमें बहुत ही आगे बढ़ाया। और हमने यहाँ ये सीखा कि जब हम हाजी करते हैं तो हमारे शरीर में हमारे क्षमताओं से परे का कार्य बाबा हमारे से करा लेते हैं। तो ऐसी बहुत गहरी अनुभव। और ये भी सीखा कि हाजी का जो पाठ है उसका बहुत महत्व है हमारे यज्ञ के अंदर। बाबा ने, सभी दादियों ने ये पाठ बजाया है। और जब हम हाजी करते तो जो नॉलेज हमारे में नहीं है वो भी आ जाती, उसकी शक्ति मिल जाती। शरीर से इतने समर्थवान ना होते भी बाबा क्या क्या सेवा करा लेते हैं, ये एक बहुत गहरी बात है। और दूसरी चीज़ ये भी हमने यज्ञ में सीखी कि दीदियों का, बहनों का बाबा ने आगे रखा है तो हमें उनको ही आगे रखना है, अपनी नहीं चलानी। कहीं भी जाना हो, कुछ भी बात हो, तो हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम दीदी के बिना बताए हम कहीं जाते नहीं, उनको हमारे जीवन की सब बातें बताते हैं। तो इस कारण से दीदियों का भी बहुत स्नेह और प्यार हमको मिला, और उस स्नेह प्यार ने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया, आगे बढ़ाया। तो थोड़ी सी चर्चा आज के टॉपिक पे। वो समय बीत गया, टॉपिक मिली थी, बहुत गई थोड़ी रही। तो ये अभी अगर अपने उस जीवन पर थोड़ा देखते हैं तो हंसी आती है खुद पर ही कि क्या हम उस समय सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या करने का समय था। बात कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात थी हेल्थ की, और कोई भी बात नहीं थी, लेकिन उसको इतना सीरियस लिया, इतना ज़्यादा उस गहराई में चले गए कि ऐसे लगता था कि मेरे जैसा दुखी, मेरे जैसा कमज़ोर, मेरे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कभी कभी इतना भी ज़्यादा हो जाता था कि लगता था कि इससे तो अच्छा इस दुनिया को ही छोड़ दें, इतना ज़्यादा दुख की फीलिंग होती थी। लेकिन बाबा ने अपनी सेवा लेने के लिए हमको रखा। और दूसरा एक चीज़ ये भी रहती थी कि अपने जो भी बड़े हैं उनको कभी दुख नहीं देना है। इस चीज़ की फीलिंग ने मेरे को बहुत सारी चीज़ों से बचा करके रखा, नहीं तो मन में कई तरह के तूफान आते थे कि इससे अच्छा जीवन ही ख़त्म कर दें, ऐसी ऐसी बातें आती थी। बाबा ने अपना बनाया, उसके बाद से तो ये सब बातें निकल ही गई। और उस समय बीत गया, और यज्ञ के इतिहास में भी 25 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। तो वो समय भी याद आता है कि कैसे बाबा की पालना, प्यार दीदियों की, दादियों की मिलती। बाबा ने शुरू से दादियों को भी यही कहा था कि अगली दिवाली नहीं आएगी। तो ऐसे वो समय बीतता गया, दादियाँ तैयार हुई और आज यज्ञ की यहाँ तक पहुँच गए कि आज हमारी जो दादियाँ हैं बहुत थोड़ी सी बची हैं। तो समय से बीत गया, साकार बाबा का समय था। बाबा अपने हाथ से, हम सुनते हैं, अपने हाथ से खिलाते थे, विदाई देते थे, वेलकम करते थे और अपने साथ घुमाते थे, गोद में बिठाते थे, गिट्टी खिलाते थे। वो समय भी बीत गया। और अव्यक्त बाबा का जो मिलन है उसका भी अलौकिक पाठ बदलता गया। पहले बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे, अलग अलग ग्रुप से मिलते थे, वरदान टोली देते थे हाथ में, वो समय बीत गया, फिर ग्रुप से मिलना शुरू हुआ, फिर जोन वाइज मिलना शुरू हुआ, फिर वो मिलन भी अब बीत गया। तो समय तो बीतता ही जा रहा है, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा भी है और रखना भी है कि जो हमने ये देखा है कि साक्षी भाव का बहुत ही हमें ध्यान रखना होता है, नहीं तो हमारा समय बहुत ही व्यर्थ में चला जाता है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में बोला है कि अगर साक्षी रहेंगे तो साथी बाप साथी रहेगा और सर्व संबंधों से, सर्व प्रकृति के आकर्षणों से हम उपराम रह सकते हैं। और एक बात और जो हमें निरंतर याद रहनी चाहिए अभी, लेकिन उतनी अवेयरनेस अब उतनी जागृति रहती नहीं है सारे दिन, लेकिन अब से उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि हर समय जो मम्मा का भी स्लोगन था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, समय अपनी स्पीड से जा रहा है तो हमें भी उसी स्पीड से आगे चलना होगा, तभी हम अपने उस मंजिल पर, उस लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से हट जाता है, जिस कारण से हमारा समय, संकल्प, एनर्जी दूसरी दूसरी बातों में बीत जाता है। तो एक छोटी कहानी है जो से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। एक राजा होते हैं, तो राजा राज्य करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, उनके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। तो एक बार वो अपने राज्य में एक उत्सव का आयोजन करते हैं और उत्सव में अपने आसपास के राजाओं को और अपने गुरु को बुलाते हैं और वहाँ की एक सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाते हैं। उसमें अपने गुरु को कुछ मुद्राएं सोने की देते हैं कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उनको पुरस्कार के रूप में दे सकते हैं। तो ऐसे वो उत्सव चल रहा होता है, चलते चलते काफ़ी रात बीत जाती है, सुबह होने ही वाली होती है। तो वो देखती है कि उसका जो तबले वाला है उसको थोड़ा नींद का प्रभाव आने लगता है। वो तो वो उसको जागृत करने के लिए एक दोहा बोलती है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, और एक पलक के कारण ना कलंक लग जाई। तो तबले वाला इस बात, इस दोहे को जब सुनता है तो सतर्क हो जाता है, लेकिन वहाँ जो और लोग बैठे होते हैं वो इस दोहे को अपने अपने अर्थ से निकालते हैं। जैसे सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो उनको स्वर्ण मंदुराए दे देते हैं, और जब दोबारा वो उस दोहे को दोहराती हैं तो राजकुमार बैठे होते हैं तो वो अपना मुकुट दे देते हैं। तीसरी बार वो दोहे को दोहराती है तो जो राजकुमारी होती है वो अपना हार उसको उतार करके दे देती है। तो राजा ये देखता है कि ये नर्तकी एक दोहा बार बार पढ़ती है और उससे सारा ही कुछ लेती जा रही है। तो वो बोलता है, नर्तकी तुम ये क्या कर रही हो, बार बार एक दोहे से तुम सब कुछ ले लोगे क्या? तो वो गुरु जो होता है उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं, हे राजन मुझे माफ़ करना, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो राजा बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोलते हैं कि नहीं, ये आज से मेरी गुरु है। तो बोलते हैं, कैसे? वो बोलते हैं कि मैंने पूरा जीवन त्याग तपस्या में लगाया और अंत समय में मैं ये देखने बैठ गया, तो ये तो इससे मेरे को बहुत शिक्षा मिली कि आज जो है अंत का थोड़ा सा समय बचा था जो मैं अपना उसमें बिताता और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो हे राजन मुझे माफ़ करना, मैं तो चलता हूँ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजकुमार से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ ऐसा जो आपने अपना मुकुट दे दिया उतार करके। तो राजकुमार बोलता है कि आपको राज्य करते हुए इतना समय हुआ और आपने अभी तक मुझे राजा नहीं बनाया। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष होने वाली है, तो मैंने कुछ सिपाहियों के साथ मिलके आपका कत्ल करने का प्रोग्राम बना रखा था। तो इस दोहे से मेरे जीवन में ये जागृति आई कि राज्य तो तुझे ही मिलना है। इससे मुझे ये जागृति मिली, और क्यों थोड़े से के लिए कलंक लगना है, समय तो बीत ही चुका है, आखिर भी राजा की जीवन कब तक रहेगी। तो इसलिए मैंने कि क्यों थोड़े से के लिए कलंक लगाए। अच्छा, फिर राजकुमारी से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ। तो उसने बोला कि मेरी उम्र इतनी हो गई, अभी तक मेरी शादी के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा, तो इसलिए मैंने भी किसी वजीर के साथ भागने का प्रोग्राम बना रखा था। इसलिए इस दोहे ने मेरी आँख खोल दी, मैं पूरी ही जागृत हो गई कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़े से के कारण क्यों ऐसा करूं। तो राजा ने जब ये तीनों की बात सुनी तो उसने उसी समय निर्णय लिया कि हम अपने इसको राजकुमार को आज ही राजा बना देंगे, इसका राजतिलक की तैयारी की जाए। और बेटी को कहा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा सा वर देख करके आपकी शादी करेंगे, और आज ही हम अपना ये इससे उपराम होकर के भगवान के सिमरण में लगेंगे। फिर जब ये बात नर्तकी ने देखी तो वो कहने लगी कि इनके कारण, मेरे एक दोहे के कारण जो है इतना परिवर्तन लोगों में आया, तो आज से मैं भी ये कार्य छोड़ दूंगी और मैं भी भगवान के सुमरण में लग जाऊंगी। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे एक धक से, एक झटके से परिवर्तन हो जाता है, और हमें बहुत सारी जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारा जीवन बहुत आगे और बाबा की जो श्रीमत है, जो आज्ञा है, उसके अनुसार आगे बढ़ता है। तो समय, आप सब जानते ही हैं, समय की ये यज्ञ के अंदर जो बाबा ने हमें सिखाया कि समय को सफल करना है, सांसों को, संकल्प को, कर्म को श्रेष्ठ बनाने का समय जो बीतता जा रहा है, इसको हमें सफल करना है। वर्तमान में पुरुषार्थ ये है कि रात को अव्यक्त मुरली बैठ करके पढ़ते हैं, और सुबह में साकार मुरली अमृत वेले के बाद में पढ़ते हैं। वहाँ पर जो भी भाई बहन होते हैं, दीदियाँ होती हैं, और करीब एक साल से, एक डेढ़ साल से भोजन पे संपूर्ण मौन, फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। ऐसा संकल्प किया हुआ है, और आप सब का जो ये संगठन में मिला है, सहयोग मिला है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीख रहे हैं। और कुछ समय विशेष एकांत का भी निकाल करके उसमें अनेक आत्मा तक बाबा की सकाश की सेवा, बाकी तो सेंटर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें विशेष रूप से स्वभाव संस्कार की भी बातें आती हैं, लेकिन बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया कि ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, कल्याणकारी है, हर एक आत्मा विशेष है, विशेष पाठ बजा रही है, एक्यूरेट पाठ बजा रही है। तो ये बातें एकदम जीवन को निश्चिंत बनाती हैं। जैसे बाबा ने आज बोला कि सत्यता की शक्ति जो है वो अगर रहती है तो वो हमको निश्चिंत रखती है, खुशी में रखती है, क्योंकि ये देखा है जीवन के अंदर कि हम जब सत्य हैं तो कोई हलचल नहीं होती है। दूसरे लोग कई बार सोचते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, कोई हलचल नहीं होती। और एक चीज़ और भी है कि जब हम दूसरों की जब हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, साथियों के साथ रहते हैं, तो उनकी सब बातें दिखाई देती हैं, अच्छी भी और ख़राब भी। लेकिन अगर हम कुछ कमी कमजोरी पर हमारा ध्यान जाता है तो वो हमें ये अनुभव है कि वो जो बात है, वो जो कमी है, वो हमारे अंदर भी अगर हम उसका चिंतन मनन करेंगे तो हमारे अंदर भी पक्की आने लगेगी। लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी की भी कमी और कमजोरी को हम अपने जीवन में ना रखें, क्योंकि बाबा ने हमें यही सिखाया है कि फॉलो फादर करना है। एक भी बात बाबा से, मुरली से जो आती है और जो अव्यक्त मुरली हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत ही हमें हमारी समझो कि जैसे कि आंखें बीच बीच में खुलती रहती है। जैसे बाबा ने कहा कि जो तीसरा नेत्र है वो खुलता जाता है, वो बहुत अवेयरनेस उसमें मिलती है, नई नई बातें मिलती हैं व्यक्त मुरली से, और उसके लिए एक उमंग रहता है कि हमें समय होते ही मुरली जरूर पढ़नी है। अव्यक्त मुरली का अध्ययन शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग को ऐसा लगता है व्यक्त मुरली के लिए कि बहुत हार्ड भोजन है ये ब्राह्मणों का, वो जल्दी हजम नहीं होता ना, जल्दी अंदर जाता नहीं जैसे। और वर्तमान में जो आत्माएं आती हैं उनको ज्ञान ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो कहती मेडिटेशन करना है, केवल मेडिटेशन ही करना चाहती है। लेकिन ज्ञान के बिना हमें ऐसा लगता है कि जब कोई भी बात होती है, हलचल में ले आती है हमें, तो उस समय ज्ञान का जो मनन है, चिंतन है, और ज्ञान की जो पॉइंट्स हैं, वही हमें उस उलझन से, उस हलचल से बाहर ले आती हैं। और क्योंकि उस समय योग नहीं हो सकता है ऐसा, फिर जब कोई ना कोई मुरली का हम अध्ययन करते हैं और उस समय योग लगाते हैं, तो योग लगाने की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ती, ऐसा अनुभव है। और भी कई अनुभव हैं इस तरह के, लेकिन विशेष रूप से कि जो साक्षी भाव है वो ना होने से हमारा समय संकल्प चला जाता है बहुत। इसलिए बाबा हमें जो नियम मर्यादाओं में रखते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत गहरी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं संस्कार हमारे और होने लगते हैं। इसलिए बाबा की याद से अपने जब हम अपने को उसके आगे समर्पण कर देते हैं तो बाबा सब सहज करा देता है। ओम शांति।
ज्योतिष साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे, ज्योतिष साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे, गिरने को है महल जगत का मन ही मन घबराए, डूबते को दिन के का सहारा मानव आज दिखा रहा, करना है जो कर लो भाई भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा समय बीतता जा रहा समय बीतता जा रहा समय बीतता जा रहा समय बीतता जा रहा।